नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोपाला। सब सखियन में राधा बड़ी है,
सब सखियन में राधा बड़ी है,
सब सखियन में राधा बड़ी है,
सब सखियन में राधा बड़ी है।
जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा,
जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा।
सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं,
सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं,
सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं,
सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं।
जैसे गगन में चंदा भजो रे मन गोविंदा,
जैसे गगन में चंदा भजो गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा।
जन मिल सब मंगल गावत,
भक्त जन मिल सब मंगल गावत,
भक्त जन मिल सब मंगल गावत,
भक्त जन मिल सब मंगल गावत।
जैसे भक्तों का मन शुद्ध भजो रे मन गोविंदा,
जैसे भक्तों का मन शुद्ध भजो रे मन
गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन
गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजो रे मन
गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर ಸಾಗರ ನಂದವ ದೊರೆ ಮನ ಗೋವಿಂದ ನಗರ ನಾಗರ ನಂದವ ದೊರೆ ಮನ ಗೋವಿಂದ ನಗರ ನಾಗರ ನಂದವ ದೊರೆ ಮನ ಗೋವಿಂದ
ಸನ್ನೋ ಭಗವದ್ಯ ಸನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ನಮಸ್ತೆ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಹರಿತಾಂ ಬದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾನಂದಮಾನಂದವನೇವಸಂತಂ ಆನಂದ ಕಂದಂ ಹತಪಾಹಂ ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಗವಾನಕಿ
ಜಯ
ಭಾಗವತ ಭಗವಾನಕಿ
ಜಯ
ವ್ಯಾಸಜೀ ಮಹಾರಾಜ
ಕೀ ಜಯ
सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः
पार्वती परे हर हर
परब्रह्म की असीम कृपा, उनका गुणगान संकीर्तन हम सब लोग यहां पर बैठ करके कर रहे हैं। यद्यपि प्रकृति कुछ ठीक नहीं है, कल से जैसे भगवान का प्रागट्य हुआ ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनकी खुशी में ये जो मेघ हैं वो गरज ही रहे हैं और बरस भी रहे हैं। वह अव्यक्त परमात्मा जिसकी चर्चा हो रही है, जन्माद्यस्यतः, उसका हम लोग ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, प्रतिदिन हम लोग उनका स्मरण करते हैं। परंतु जब अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त पर ब्रह्म जब अपनी माया का, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट होता है, तो भक्तों को अपने समान दिखने लगता है। वही परब्रह्म जो अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है, त्रिगुणातीत है, वह परब्रह्म जब माया का आश्रय लेकर के प्रकट हो जाता है तो कैसा लगता है? अपना लगता है। इसलिए संभवतः जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, और प्रेम पूर्वक श्रवण ही नहीं करते हैं, उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे आप लोग प्रातःकाल सम्मिलित हो जाते हैं। और आप ही नहीं, जो वेदों की ऋचाओं का गान करने वाले, उन बालकों को भी मन में आया कि आज क्यों ना हम लोग भी आपके साथ में सम्मिलित हो जाएं। बड़ा सुंदर प्रातःकाल का वातावरण बना था। ऐसा ही भगवान बालकृष्ण मथुरा से गोकुल पधारते हैं, वहां पर पुतना को उसका मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान राक्षसों को भी मार करके उनको अधोगति नहीं देते हैं। ये देखना, ये परमात्मा की विशेषता है। जब किसी दैत्य को वध होता है, दैत्य के प्राण हरते हैं, तो उसको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। ये भगवान का बहुत ही अनुकंपा है। पुतना का भी इसी प्रकार उद्धार किया, और अब भगवान को अभी 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 बहुत दिन नहीं हुए हैं, भगवान का जात संस्कार हुआ, उसके बाद में एक संस्कार होता है, कौन सा संस्कार होता है? करवट बदलने वाला। अपने आप पर जो षोड़श संस्कार कहे गए हैं, एक करवट बदलने वाला भी एक संस्कार होता है। और पहले के समय में ये संस्कारों को बड़ा महत्व दिया जाता था। फिर से गोकुलवासी एकत्रित हुए हैं और एक बहुत सुंदर समारोह चल रहा है, परंतु जिसके लिए समारोह कभी कभी होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान होता नहीं है। और धीरे धीरे जगह कम पड़ दी गई, तो जैसे लोग कहते हैं ना, यहां पर व्यवस्थापक थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो ये क्या है, इनको बाजू में रख दो। नहीं, यहां नहीं रखेंगे, परंतु वहां वैसा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब कितना बड़ा वो महल होगा, कितना बड़ा प्रासाद होगा वो नंद बाबा का, वो हम लोगों को पता नहीं है। परंतु जगह जब कम पड़ने लगी तो जो लाला थे वहां पर, उनको एक छकड़ा पड़ा हुआ था, छकट। और छकट जहां पर वो छकड़ा था, उसमें जो संसारिक वस्तुएं होती है ना, उसमें तो ज्यादा मटके रहे होंगे, बर्तन रहे होंगे, वो सब लोग वो सांसारिक वस्तु वहां पर रखते थे, और उसके नीचे वो लाला को लिटा दिया। लाला ने विचार किया कि ये तो मेरे लिए कार्यक्रम हो रहा है, मेरा ये उत्सव हो रहा है, और मुझे बाहर कर दिया। ये होता है। एक बार विले पार्ले में एक बड़ा बंगला था, वो टूटने लगा था। उनकी यहां की जो उनकी धर्म पत्नी थी उस सेठ की, बोले महाराज हमारा एक काम करेंगे। मैंने कहा क्या काम है बताओ। बोले हमारे सेठ जी बंगले को नया कर रहे हैं, और हमारे वहां पर भगवान राधा कृष्ण वहां प्रतिष्ठित हैं, उनकी कोई आपके पास में व्यवस्था हो पाएगी। मैंने कहा भगवान की व्यवस्था यहां नहीं होगी तो और कहां होगी। आप लोग कभी जाना देखना संन्यास आश्रम में, नटराज के साथ में, भगवान के नटराज के साथ में वो मूर्ति मैंने वहां रखवा दी थी। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको कितना ही मिल जाए ना, उसको पूरा पड़ता नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा यहां हुआ, परंतु वहां पर ये था कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए। हमारे यहां पर अतिथि देवो क्या कहते हैं, जब अतिथि आता हो वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो भगवान अपने यहां पर, और कन्हैया तो अपना हुआ ना वहां पर, कन्हैया ऐसा नहीं है कि कन्हैया साक्षात परब्रह्म है वहां किसी को पता नहीं है। देखो पता नहीं है कि वहां पर साक्षात परब्रह्म जो आया है अपने यहां पर, उसको किसी को भान नहीं है, उसको पहचान नहीं है, वो आगे पहचान होगी। तब तक तो लगता है कि अपना ही बालक है, अपना ही पुत्र है, इसको थोड़ा सा बाजू में रख दो, और उस शतक के नीचे वहां पर वो छकड़ा है उसके नीचे रख दिया, और बड़ा आनंद वहां पर चल रहा है, विनोद प्रमोद भोजन पानी सब चल रहा होगा। भगवान ने कहा कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है, और धीरे से एक अंगूठा लगाया और छकड़ा था वहां पर वो टूट गया। बड़ी भयंकर आवाज हुई, लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, सब लोग दौड़े दौड़े आए तो वहां पर छकड़ा तो वहां पर गिर पड़ा है, और वहां पर हमारे लाला वहां पर आनंद से मुस्कुराते हुए वहां पर देख रहे हैं। लोगों ने विचार किया कि चलो अच्छा हुआ ये छकड़ा हमारे लाला पर नहीं गिरा। धीरे धीरे उठा के लाए, और उठा लेके लाने के बाद में फिर उनका कुछ संस्कार किया, उनको कुछ झाड़ फूंक की माता ने, और उसके बाद में आगे जब चले कहते हैं कि ऐसा अनेक अनेक प्रकार का उनका उनकी लीलाएं चलती गई। और उसके बाद युवा के धीरे धीरे एक दिन की बात है कि वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे गर्ग जी महाराज, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे यहां से जो भगवान कृष्ण हैं, इनके लिए आप कुछ कुछ कार्य करें। तो गर्ग जी महाराज पुरोहित हैं यदुवंश के। गर्ग जी महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, आगे थोड़ी सी कथा कहेंगे। परसों के दिन उनकी एक पुत्री थी, उसके विषय में संबंध में कहेंगे। गर्ग जी महाराज पुरोहित हैं, और उनको वसुदेव जी ने कहा कि ये गर्ग जी हमारे दो पुत्र कहाँ हैं, गोकुल में है, और जाकर के आप नाम संस्कार कर आओ। गुप्त रूप से कहा, अपने यहां पर नाम संस्कार करने की परंपरा है, और 12 दिन के पश्चात नाम संस्कार होता है या 12वें दिन होता है, परंतु आजकल तो पहले से नाम रखा जाता है, और रखने की पहले से सोचते हैं कि क्या रखा जाए, क्या नाम रखा जाएगा। विज्ञान आगे बढ़ गया है, इसलिए हम लोग उसके साथ खिलवाड़ भी करते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। नाम संस्कार करने के लिए गर्ग जी महाराज को वहां पर संकेत किया, और गर्ग जी वहां पर आते हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमतात्वः व्रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने कहा था, इसलिए गर्ग जी गोकुल में आए और गोकुल में आने के बाद में गर्ग जी को देखा नंद बाबा ने और नंद बाबा ने कहा कि आज आप अच्छा हुआ आप यहाँ आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो बालक हैं, उनका नाम संस्कार करना है, इसलिए अनायास आप यहाँ पर आए हैं और उनका स्वागत किया सत्कार किया। परंतु गर्ग जी कहते हैं कि हे बाबा, हम आपके पुरोहित हैं और ये सब लोग जानते हैं और ये कंस भी जानता है कि हम आपके पुरोहित हैं, और ऐसा ऐसा एक संदेश मिला है कंस को जो वसुदेव जी के यहाँ पर कन्या हुई और उसने जाते जाते कह दिया है कि तुम्हारे मारने और तुम्हारा मारने वाला कोई पैदा हो चुका है, इसलिए शायद संदेह हो सकता है, आपके यहाँ पर नाम संस्कार और करूंगा और आप सबको बुलाओगे तो, क्योंकि जब अभी तो उत्तर अवस्था में बालक की प्राप्ति हुई है तो बहुत उनके अंदर प्रसन्नता है, खुशी है, वो खुशी जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन गर्ग जी ने थोड़ा चताया कि आप ऐसा नहीं करना। नंद बाबा ने कहा कि हम लोग आज ऐसा करेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे दो बालक रहेंगे और उनकी मैया रहेगी, हम लोग केवल पांच जन रहेंगे। कौन? पुरोहित रहेंगे, दो बालक रहेंगे और दो उनके माता पिता रहेंगे। रोहिणी का नाम यहाँ पर नहीं आया। हाँ, हो सकता है उस समय बुलाया, पर यहाँ पर नहीं कहा कि हम लोग गौशाला में जाते हैं, और गौशाला में जाने के बाद में वहां पर गौशाला में उन्होंने आयोजन किया और वहां पर नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। दो वहां पर पुत्र हैं जो गोकर गर्ग जी कहते हैं, पहले बड़े हैं ना, व्यास जी का जो शेष जी का जो अवतार हैं वो बड़े हैं, एक वर्ष बड़े हैं, और गर्ग जी को ये था कि उनका पहला नामकरण संस्कार किया जाए। तो गर्ग जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी पुत्र हैं, रमयन सुरदह गुण, ये सबको जोड़ने वाला होगा, सबकी मित्रता करने वाला होगा। अख्याति रामयति, और राम के समान ये सबके साथ में हृदयता से उसको मैत्री करने वाला होगा। और एक बात है कि बलाधिक्यात बलम विदुहु, और बहुत बलवान होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। एक नाम नामकरण संस्कार बलराम जी का हुआ, उसको एक वर्ष से ज्यादा लग गया। ऐसा होता है अपने यहां पर, नाम संस्कार हो, यज्ञ संस्कार हो, ये कभी कभी देरी हो जाती है, कुछ कारण हो सकते हैं। और बोलते हैं कि जो दूसरा है उनके लिए विशेष यहां पर कहा गया है, आसन वर्णासो यास्य, बोलते हैं कि ये जो दूसरा है उसके अनेक अनेक नाम हैं, श्लोक शुक्तो दप्तस तथा पीत, जो पहले कभी शुक्ल था, बहुत बिल्कुल शुभ्र, कभी उनका रंग लाल हुआ, कभी पीत वस्त्र हुआ, परंतु इस समय इदानीम कृष्णताम गतः, अब इनका शरीर, इनका रंग जो है वो सांवला है, कृष्ण शरीर है, इसलिए एक इनका नाम कृष्ण होगा। जो आकर्षित करता हो, जो अपने ओर खींचता हो, वो कृष्ण, इसका नाम कृष्ण, जो छोटा है उसका नाम कृष्ण है, कृष्ण होगा। प्रायगम वासुदेवस्य, अब ये कभी उसका वासुदेव के यहां भी जन्म हुआ है, इसलिए एक नाम उनका वासुदेव होगा। ऐसे तो इनका बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुपस्यते, आपके जो सूत है, आपका जो पुत्र है, इसके बहुत से नाम है, इनके बहुत से कर्म है, इनके बहुत से गुण है, तान्यहम वेदनो जनः, उनके नामों की गणना कर नहीं सकते, ऐसा वहां पर संकेत दे रहे हैं। और एक बात कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, तस्मादात्मजो यम नारायण, नारायण कह नहीं जा रहे थे गर्ग जी महाराज, तब तक भगवान ने थोड़ा सा संकेत किया, अभी मेरी कोल मत खोलो, जो ऊपर वाला कह दिया वो कह दिया, परंतु मैं साक्षात नारायण हूं ये मत कहना। तो गर्ग जी कहते हैं कि नारायण समो गुण, नारायण के समान इनके गुण होंगे। ऐसा तुम्हारा जो पुत्र है श्रीया कीर्त्यानुभवे न गोपायस्व समाहितः, और ये जो है वो तुम सबकी रक्षा करने वाला होगा। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार होने के बाद में मैया ने कहा कि गर्ग जी महाराज बहुत समय हो गया, अब यही कुछ भिक्षा लेकर के जाए। गर्ग जी ने कहा कि मैं तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तो लेता नहीं हूँ। बोले ऐसा करते हैं कि आपको कपिला गाय का दूध ला करके आप उसको खीर बनाओ और फिर आप भोजन पाओ। ताकि ठीक है, दूध लाया और गर्ग जी महाराज ने खीर बनाई। उनके भी भगवान साथ में थे, तो जब कोई सज्जन कोई ब्राह्मण कोई भोजन बनाता है तो पहले भगवान को भोग लगाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाज। वैदिक मंत्र कौन सा होगा जब भोग लगाएंगे?
प्रजातारंदारी खा ऊर्जन्नो देवि पदे दातु पदे गो वो भक्षी अमास्तमो वो भक्षी चस्तोर्जम्बो भक्षी अरायस्पो हस्तारा यस्पो कम्मो भक्षीया।
गर्ग जी महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगाने लगे। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा, जैसे ये मंत्र बोल रहे थे तब तक वो छोटे से बालक धीरे 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 आगे बढ़े और जहां पर वो खीर रखी हुई थी उसमें हाथ डाला और भोग लगा लिया। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो झूठा बना दिया। गर्ग जी को कहा कि आप दूसरी खीर बनाओ। अरे मैया अभी बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना भी है और कहीं कंस को पता लग गया तो और समस्या हो जाएगी। इसलिए बालक भगवान का स्वरूप होता है, हम लोग ही बोलते हैं ना, इसलिए बालक का झूठा झूठा नहीं माना जाता है। कभी कभी बच्चे मंदिर में आते हैं और जो पंचपात्र होता है उसमें वो मुंह में डाल लेते हैं तो चल जाता है, कह कि भगवान ये बालक है, वो तो उसका भगवान का स्वरूप है। और यार गर्ग जी विचार करते थे कि आज तक तो मैं भोग लगाता था, आज साक्षात भगवान ने उसको पाया है और आज तो मेरे भाग्य का उदय हुआ है। इस प्रकार वो करते हुए वो अपना भगवान का भजन करते हुए निकल गए और उस समय भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं और अब घुटने के बल चलने लगे। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं कि उस समय घुटने के बच्चे चलते हैं और धीरे धीरे वो बाहर जाने लगे। और बाहर जाकर के उनका काम था कि जो गोपी के यहाँ पर जाकर के गोपी का ऊपर यहाँ पर जाकर के जो जो मक्खन बना करके रखती थी सूखों पर वहां पर जाना और मक्खन को वहां से लेना और मक्खन को खाना। इसलिए हमारे यहाँ पर एक माखन चोर भी कहा जाता है उसको। भगवान को चोर कहो ना, अगर भक्त चोर कहे दूसरा कोई चोर कहे तो बुरा लगेगा। हम लोग क्या कहते हैं उनको? माखन चोर बोलते हैं। भगवान माखन लेने के लिए जाते हैं परंतु गोपिकाओं को लगता है कि बार बार हम देखें भगवान को, बार बार देखे हमारे यहां नहीं आया आज, हमारे यहां नहीं आया आज, रोज रोज कहां जाएगा। तो एक दिन सब गोपिकाएं साथ मिलकर के आई और यशोदा मैया से उनकी शिकायत करने लगी कि हे यशोदा तुम्हारा जो छोटा नन्ना है ना लाला, ये आता है हमारा हमारे यहां पर आकर के माखन चुराता है। और केवल माखन नहीं चुराता है, ये क्या करता है आकर के पहले बछड़ों को छोड़ देगा। वत्सान मुंचियन कचित समय जो बछड़े हैं ना उनको छोड़ेगा। तो हम लोग जब बछड़ों को लेने के लिए जाएगी तो यहाँ पर घर में घुसेगा और वहां पर माखन चुराने लग जाएगा। और इसको पता है जो तुमने सुंदर सुंदर अलंकार बना के रखे हैं, इसको पहना के रखे हैं, उसके द्वारा वो भीतर जाता है और उसको पता है अंधेरे में जाने के बाद में वो माखन कहाँ रखा है। हम लोग कभी कभी उसको ऊंचाई पे रखते हैं और उस समय वो क्या करता है कि किस मटके में माखन है किस में नहीं है उसको अपने छड़ी से उसको देखता रहता है और मटके फोड़ता रहता है। और मटके फोड़ने के बाद में उसमें से छाछ निकल जाता है और माखन का वो जब गोला आता है तो अपने हाथ में पकड़ता है। और कभी कभी हम लोग छीकों को बहुत ऊंचा रखते हैं और वहां पर ये दो बालकों को चार बालकों को वो खड़ा करता है और उसके ऊपर वो ऊपर चढ़ता है। तो जब भगवान वहां पर ऊपर चढ़ते हो तो यहां पर क्या बोलते हैं उसको गोविंदा। तो भगवान का थोड़ा सा भजन न कीर्तन कीर्तन किया जाए।
घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम आवीने मारी मसूसी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम आवीने मारी मसूसी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम अभी ने मारी मछू की थोड़े। मथुरा ने झेल मान जनमिया मथुरा ने झेल मान जनमिया वासुदेव टोप नामा मेली निहालिया तू गुड़िया माँ तू गुड़िया माँ मेलवा ने जाए मारो श्याम श्याम अभी में मारी मधु की भोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम अभी में मारी मधु की भोड़े। अरे रे श्याम अभी में मारी मधु की भोड़े। जमना आवी छलकारा देव काठ यमुना आवी छलकारा वासुदेव एवा मन मामू जाना। यमुना जी माँ यमुना जी माँ तेरी पड़े मारो श्याम श्याम अभी ने मारी मधु की भोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम अभी ने मारी मधु की भोड़े। हरे रे श्याम अभी ने मारी मधु की भोड़े। चार पांच गोवाल टोले चार पांच गोवाल टोले बनी ने एक बिरयाने का भेजनी गोपियों ना धर्मा वालों चोरियों करे चार पांच गोपियों टोले बनी चार पांच गोपियों टोले बनी एक एक कान भी ने एक एक गोपी वृंदावन वृंदावन रात बचावे मारो श्याम श्याम आविने माई मधु की बोले हरे रे श्याम आविने माई मधु की बोले कमर कमर मारा वल्लोड़ा गाजे श्याम आविने माई मधु की बोले हरे रे श्याम आविने माई मधु की बोले
गोपिकाएं भगवान को देखने के लिए यशोदा मैया के पास आती हैं, कुछ शिकायत करती हैं और मैया हंस के टाल देती हैं। ये तो ऐसा मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, आता होगा तो मैं सुख प्राप्त कराने के लिए। ऐसी बाल लीलाएं अनेक हुई और एक लीला यहां पर कहते हैं कि भगवान छोटे हैं और आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ महीने में पहले पहली बार वर्षा हुई है और पहली जो बरसात होती है तो भूमि से बड़ी सुंदर सुगंधी निकलती है। अब यहां कहां से निकलेगी, यहां पर जमीन रही नहीं, तो जाकर के देखो, गांव में जाकर देखो, यहां पर खेती बाड़ी होती है, जहां पर खेत होते हैं वहां जाके देखो, जो पहली बरसात के बाद में जो भूमि से सुगंधी आती है वो बहुत आकर्षित करती है। और वो खास करके जो बच्चों को जो छोटे छोटे होते हैं ना, वहां पर जाते हैं और क्या करते हैं, उस मिट्टी को लेकर के खाने लगते हैं। बहुत से लोगों को भी पसंद होती है, परंतु एक दिन की बात है, एकदा देवानस्ते रामाद्य गोपदारका, एक दिन सब बच्चे लोग खेल रहे थे और भगवान ने देखा कि अब मुझे, मैं तो शुद्ध सत्वगुण से संपन्न हूं, इसलिए मुझे अभी रज कर्म करने हैं, राजसी कर्म करने हैं, इसलिए उसका भी थोड़ा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो रज एक पृथ्वी का नाम है, रज होता है। तो भगवान ने विचार किया, जो वर्षा पड़ी थी, वर्षा ऋतु में जो सुंदर सुंदर सुगंधी आ रही थी, और भगवान ने छोटा सा, सब कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, माखन तो खाता ही खाता हूं, परंतु आज भूमि को भी मैं स्पर्श करो, और भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुंह में डाल दी और बलदेव जी ने देख लिया। ये बालकृष्ण ने मिट्टी खाई है और इसलिए अगर मिट्टी खाई है तो पेट में जाएगी और पेट में कीड़े पैदा होंगे, होते हैं। परंतु भगवान को तो भगवान तो सब कुछ भगवान का है। भगवान ने वो मिट्टी खाई और बलदेव जी ने उसकी शिकायत मैया से कर दी, हे मैया लाला ने मिट्टी खाई है। चिंतित हो गई मैया और मैया आई और मैया ने कहा कि हे लाला, हे कृष्ण, तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोलते ये बलदेव कहता है, बोले झूठ बोलता है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बलदेव तो झूठ नहीं बोलेगा, बोले मैं झूठ बोल रहा हूं। भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम है। भगवान कर्ता भी है अकर्ता भी है और कर्ता और अकर्ता से भिन्न भी है। भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो भगवान ने अपना मुंह कहा कि देख लो। और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला उस समय यशोदा मैया ने देखा कि वहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर वहां पर दिख रहा है। वहां पर बड़े बड़े पर्वत हैं, वहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, संपूर्ण विश्व दिख रहा है और विश्व में भारतवर्ष भी दिख रहा है। भारतवर्ष में वहां पर मथुरा मंडल दिख रहा है, मथुरा मंडल में वहां पर गोकुल दिख रहा है और गोकुल में एक मैया छोटे से बालक को वो पूछ रही है कि तुमने मिट्टी खाई है? ये किसने देखा? यशोदा मैया ने संपूर्ण, क्योंकि भगवान को दिखाना था कि मैं वो सामान्य बालक नहीं हूं जो तुम समझती हो, परंतु भगवान को लगा कि इतने जल्दी अगर मैं भेद खोल दूंगा तो हम आगे लीला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने उस लीलाओं को फिर आवरण कर दिया और लीलाओं का आवरण करके यथावत भगवान बाद में कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी खाई है। यशोदा बोलते हैं कि तुमने मिट्टी बदल गया। भगवान स्वीकार करते हैं कि मैंने मिट्टी खाई है, परंतु मैया बोलते हैं कि तुमने कहां खाई, तुम्हारे मुंह में तो मिट्टी थी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो और भी कुछ मैंने देखा। ऐसी लीलाएं चलती है। और एक दिन कहते हैं कि हमारी यशोदा मैया एकदा ग्रहादिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मान् कर्मांतरित्याक्षु निर्मथ स्वयं दधी। उनके पास भी बहुत सेविकाएं थे, परंतु उनको अलग अलग कामों में लगा दिया और यशोदा मैया स्वयं दही मथने के लिए वहां पर मथने लगी। और जो पहले की माताएं जब कुछ कार्य करती थी तो गीत गाती थी, अतरण सी गाओ गीत गाती थी, और यशोदा मैया भी वहां पर गीत गा रही है। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी मंथने काले स्मरंती नान्य गायतः। उस समय जो जो लीलाएं हुई माता यशोदा उस समय गान कर रही है। पहले करते थे कि नहीं करते थे? जो सौराष्ट्र से आए होंगे, जो गुजरात से आए होंगे, जो राजस्थान से आए होंगे, उनकी जो माताएं जब वो आटा पीसती थी तो उस समय सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके आटा पीसती थी और वहां पर सुंदर सुंदर गीत गाया करती थी। और वैसा ही यहां पर यशोदा मैया भी गीत गा रही है और गीत गाते हुए यहां पर अनेक प्रकार का और माखन निकाला। और माखन निकाल करके उस समय कहा कि चलो, और उसी समय भगवान ने रोते रोते वहां पर आए और मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ। और भगवान ने आकर के दूध पीने के लिए माताजी से थोड़ा सा आग्रह किया और माताजी ने उनको ले लिया, दूध पिलाने लगी। तब तक यशोदा मैया ने लाला के लिए एक जो कपिला गाय थी उसका दूध रखा था चूल्हे पर, और वो वहां पर जब उबलने लगा, वो बाहर आने लगा, तो लाला को यहां पर छोड़ करके वो दूध को देखने चली गई और लाला हो गए नाराज, कन्हैया नाराज हो गया और अंदर जाकर के देखने लगा कि बासा बासा माखन खाने लगा। और बासा माखन खाने के बाद में देखा कि भैया मैया कहां गया, तो मैया उसके पीछे पीछे दौड़ी है पकड़ने के लिए, परंतु भगवान हाथ नहीं आ रहे हैं। उसने भगवान ने देखा कि एक मटके पर मैया ने माखन रखा हुआ है, वहां एक उखल पड़ा था, उखल पर चढ़ गए और उस मटके में से माखन निकाल करके खाने भी लगे और साथ साथ में वहां पर बंदरों को भी खिलाने लगे। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते वहां पर बंदर कहां से आए होंगे, परंतु बंदरों को जब खिलाने लगे तो यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय राजा ने पूछा कि बंदरों को क्यों खिला रहे थे। कहते कि पूर्व जन्म में भगवान राम की बंदरों ने बहुत सेवा की थी, इसलिए भगवान ने उनको भी माखन वहां पर खिलाया। और ये यशोदा मैया ने देखा और थोड़ा सा उनको क्रोध आया, आवेश आया और उसको छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी। उनको क्या मालूम है कि तो पूर्ण परब्रह्म है, वो तो माया का आवरण पड़ा हुआ है ना, ठंड तो नहीं लग रही ना, ठीक है, माया का आवरण पड़ा हुआ है। भगवान जो सर्वात्मा है, जो सबको नियतम के नियंता है, आज मैया से डरे डरे से भाग रहे हैं। मैया ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहा कि आज ये मेरे को काम करने देगा नहीं, इसलिए कहा कि अपने सेविका को कहा कि रस्सी ले आओ। रस्सी लाए और रस्सी से उनको बांधने का प्रयत्न किया, परंतु रस्सी थी तो बांधते बांधते दो अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी सेविका से बोला कि दूसरी रस्सी ले आओ और उसको बांध दिया तो और वो दो अंगुल छोटी की छोटी पड़ी। ऐसी जितनी रस्सी थी वो सब लाए परंतु दो अंगुल छोटी ही पड़ी। मैया एकदम खूब ऐसे पसीने से लपथप हो गई। भगवान ने कहा कि अब अपनी लीला को थोड़ा सा संवर लेना चाहिए, और भगवान स्वयं उस उखल के साथ में बंध गए और मैया अपने काम धंधे पर लग गई। विचार किया कि मुझे कुछ अवतार की कार्य करने हैं, और उखल को धीरे 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 वो खसकाते हुए बाहर ले जाते हैं, और बाहर दो वृक्ष सीधे खड़े हैं और दोनों वृक्षों के बीच में भगवान उस उखल को लेकर के आगे तो चले गए। उखल बड़ा था और उखल पीछे उसमें दोनों में फंस गया, और भगवान ने धीरे से हल्का सा एक छोटा सा झटका दिया और दोनों के दोनों वृक्ष वहां से धराम से नीचे गिर गए। बड़ी आवाज हुई, नंद बाबा दौड़े दौड़े बाहर से आए, उन्होंने देखा कि यहां पर तो ऐसी लीला हुई है। बच्चे वहां पर खेल रहे थे, बच्चों को पूछा भाई ऐसे क्या हुआ, बोले ये कन्हैया है ना, ये अंदर घुसा और इसने उन बड़े बड़े वृक्षों को इसने गिरा दिया। नंद बाबा को सहसा विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने धीरे से जल्दी से जल्दी जाकर के उनकी रस्सी को खोला, परंतु उनके कमर में उसका निशान पड़ गया था, इसलिए कहना शुरू कर दिया कि उस रस्सी के निशान के कारण भगवान का एक नाम पड़ा, दामोदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ 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 नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण कन्हैया। राजा ने पूछा कि दो जो वृक्ष थे खड़े जिनका उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने, वो क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो जो कुबेर जी के दो पुत्र थे, एक का नाम नल कुबेर था और दूसरे का नाम मणिग्रीव था, एक सरोवर में नहा रहे थे और सरोवर में ऐसे नहा रहे थे जैसे नहीं नहाना चाहिए, और वहां पर नारद जी निकले, और नारद जी जब निकले तो वहां पर सरोवर में और भी वहां पर अनेक अप्सराएं स्नान कर रही थी, और ये दो जो कुबेर के पुत्र थे ये भी स्नान कर रहे थे। सब लोगों ने जो दूसरे थे उन्होंने सबने नारद जी को नमस्कार किया, परंतु जो घमंड होने के नाते हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हम किसी के सामने क्यों झुकेंगे, इसलिए वो खड़े के खड़े रहे वहां पर। नारद जी ने विचार किया कि इनको थोड़ी सी शिक्षा देनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि तुम जाओ, जैसे अभी खड़े हो वैसे तुम उसी प्रकार से तुम वृक्ष बन जाओ। उनको साथ मिला तो उन्होंने कहा कि आप क्या किया जाए। नारद जी के चरणों में गिरे और नारद जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार का एक भगवान ने ये जो यमुनार्जुन जो वृक्ष थे उनका उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद में अनेक प्रकार की यहां पर लीला करते करते एक बार गोकुल में एक फल बेचने वाली आई, फल लो फल लो फल लो, और उस समय संयोग से घर में कोई नहीं था। भगवान बाहर आते हैं, भगवान बालकृष्ण, और बोलते हैं कि, और उनको देखते ही उस फल बेचने वाले ने उनको फल दे दिए, तो फल बिना मूल्य के तो नहीं लेना चाहिए। तो भगवान अंदर गए और वहां से बाहर से थोड़ा सा अनाज लाए और उस फल बेचने वाले को जब प्रदान किया दे दिया, तो फल बेचने वाले जब घर में गए तो वहां पर देखा कि वो हीरे मोती जवाहरात है, और यही बात आगे जाकर के यज्ञ पत्नियों को फल बेचने वाले बोलेगी। जो माताएं जो माताओं का जो पता लगता है ना, तो माता एक दूसरे से बात करती रहती है, तो वो यज्ञ पत्नियों को इसी के कारण पता लगा, आगे बात आएगी उसको। इस प्रकार का जब उन्होंने करते गए वो लीला, और सब लोग वहां पर देख रहे हैं कि अब यहां पर बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, तो वहां पर एक उपनंद थे, उनसे वहां पर सब लोगों ने कहा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहां नजदीक में एक सुंदर उपवन है जिसका नाम वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशवम नवाकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम, बोलते कि गोप गोपियों को सेवन करने योग्य हमारे गौ को वहां पर चारा वहां पर तृण मिल सकता है, ऐसा सामान एक सुंदर एक स्थान है, वहां पर हम लोगों को चलना चाहिए। और सब लोगों ने गोकुल से प्रस्थान कहां किया, वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, और वृंदावन में प्रस्थान करने के बाद भी वहां पर बड़े बड़े आसुर आने लगे, और आसुर आकर आते और उनको भगवान उनको वहां पर स्वधाम पहुंचा देते हैं। एक दिन की बात है कि सभी के सभी बाल गोपाल वहां पर गए हुए थे, और अघ नाम का राक्षस, अघ मतलब पाप होता है, पाप की भी कभी कभी भगवान के सामने जाता है, और अघ नाम का दैत्य था वो कंस ने भेजा हुआ था, और वहां उसने कहा कि मैं आज सभी जो ये बाल गोपाल है उनको भी और अंत में भगवान कृष्ण को भी मैं निगल जाऊंगा। इस प्रकार वो बड़ा भारी सर्प उस वन में जाकर के वो लेट गया, और वहां पर सभी लाल गोपाल अब वो पछड़े चराने का उनको कार्य मिल गया है। पौंगंड जो 5 वर्ष के आसपास की आयु होती है हमारे यहां पर, एक होता है शिशु, जो एक छोटा होता है वो शिशु होता है, फिर बालक बनता है, और उसके बाद में वय पौगंड वय प्राप्त होता है। पौगंड वय में भगवान श्री कृष्ण को एक कार्य मिल गया, वो बछड़े को पालन करने का। भगवान बछड़े लेकर के गए हैं, और साथ साथ में वहां पर बाहर वहां पर जाकर के वन में जाकर के बछड़े को चला रहे हैं, और वहां पर बाल गोपाल सब साथ में हैं। उन्होंने देखा कि एक सर्प, भयंकर सर्प वहां पर लेटा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि वहां पर उसकी सर्प है, ऐसा वो समझ नहीं रहे, परंतु उसके लिए उपमा दे रहे कि कहीं सर्प तो नहीं है, और सर्प के समान लेटा हुआ है, और उसका देखो उसका जो मुंह है वो ऐसे, उसने मुंह खोल करके लेटा था। और बालकों ने कहा कि ये शायद हो सकता है कि कोई पर्वत की गुफा है, ऐसा दिख रहा था। और उस समय कहा कि हम गुफा में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे सब के सब ग्वाल बाल उस सर्प के मुंह में प्रवेश किया और सोच रहा था कि अब कृष्ण आ जाए तो मैं कृष्ण को भी मैं निकल जाऊं। और इसी प्रकार आज में विचार किया भगवान कृष्ण ने भी इसका भी उद्धार करना चाहिए, और उद्धार करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर पहुंच गए और उसने अपना सर्प ने जो अग था असुर था उसने अपना मुंह जो बंद किया तो सबके सब भीतर बैठ गए। भगवान ने अपने शरीर को विशाल बनाया और भगवान ने जैसे ही विशाल बनाया वो सर्प का वहां जो शरीर था वो दो भागों में विभक्त हो गया और वहां पर अघासुर का भी वध हो गया, अघासुर की भी मुक्ति हो गई। और इस समय एक बार यही चीज देख रहे थे ब्रह्मा जी, एक दिन की बात है, भगवान ने सबको आदेश दिया कि आज सब लोग अपने अपने घर से कोई पदार्थ बना के लाना, सब माताओं को कहना कि हमारे यहां पर आज विशेष रूप से हम लोग वन भोजन करेंगे। भगवान तरह तरह के लीलाएं कर रहे हैं, सब बालकों को कहा कि अपने माताओं से बोलना और हम लोग सुंदर का वन भोजन करेंगे। और वन भोजन करने के लिए भगवान वहां पर चलते हैं, सब लोगों ने अपने साथ में कोई ना कोई पोटली रखी है, किसी के माता ने पूरी बना दी, किसी ने कचौरी बना दी, किसी ने को दही बना दिया, किसी ने खीर बना दी, किसी ने मालपुड़ा बना दिया, ऐसे सब लोगों ने अपना अपना भोजन वहां से लाए। एक उनका एक साथी था जिसका नाम मधुमंगल था, ब्राह्मण बालक। पहले के ब्राह्मण बड़े संतोषी होते थे, जो मिला वो मिला, नहीं मिला नहीं मिला। उस ब्राह्मण के पास भी कुछ नहीं था, वो शांडिल्य पुत्र मधुमंगल था। उसने भी कहा कि माँ, आज कन्हैया ने हम लोगों को कहा है कि अपना अपना कुछ भोजन लेके आना। मधुमंगल की माँ ने कहा कि अपने यहां तो कोई ऐसी पंच पकवान बनाने योग्य कुछ साधन है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। माँ ने कहा कि बहुत पुरानी छाछ पड़ी हुई है, वो चल जाएगा, क्योंकि हमारा भोजन तो चाहिए। भगवान ने हमारे बालकृष्ण ने कहा है कि हमें अपना अपना भोजन लाना है। और सबके सब अपना भोजन ला करके वो वन में बैठे हैं और बछड़े वहां पर चल रहे हैं और वहां पर सब बैठ करके भोजन हो रहा है, वन भोजन। भगवान बीच में बैठे हैं, एक बालक यहां बैठा है, एक बालक यहां बैठा है। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है उस प्रकार भगवान बीच में बैठे हुए हैं और सब गोप बालक बाजू में बैठे हुए हैं और सब अपना अपना भोजन सब लोगों ने निकाला। और वहां पर पात्र क्या थे, यहां पर भागवतकार कहते हैं केचित पुष्प दलय केचित, किसी ने पुष्प को लाया होता ना पुष्प और उस पर अपना भोजन रखा, किसी ने वहां पर पत्ते तोड़ के लाए पल्लव, और यहां पर फल भी लिखा है, और अलग अलग प्रकार के वहां से वन में से ही वो पात्र लाए और उसमें अपना अपना भोजन। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे माँ ने क्या भेजा है, सब लोग भोजन करने बैठे हैं और एक एक गस्सा सबसे ले रहे हैं। वहां पर झूठे का कोई प्रश्न नहीं है, जब प्रेम जहां होता है वहां पर वो सब के सब मिट जाती है दूरी। और जो शांडिल्य था वहां पर, जो मधुमंगल था, वो पीछे मुंह करके उसने कहा कि मैं भगवान को ये कैसे नहीं दे सकता हूं। और भगवान ने झपट्टा मारा और झपट्टा मार करके वो तब तक वो जो वहां पर मटका था वो टूट गया और मटके का थोड़ा सा वहां पर छाछ बचा था। भगवान ने कहा कि इतना सुंदर सुंदर उसकी सुगंधी आ रही है और भगवान ने उसको भी वहां पर पा लिया। और ये सब सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी अभी जिन्होंने अघासुर का नाश किया है ऐसा परब्रह्म कैसे हो सकता है। उन्होंने विचार किया और तब तक वहां पर एक उन्होंने एक लीला रची और कुछ बछड़े वहां से थोड़ा दूर चले गए थे। ब्रह्मा जी ने उनको लेकर के एक गुफा में जाके रख दिया और गुफा में रखने के बाद में सब लोगों को पता लगा हमारे बछड़े कहां हैं। भगवान ने कहा कि थोड़ा देख के आओ। सब लोग जब बछड़े देखने के लिए सब लोग गए, वहां पर ब्रह्मा जी ने उनको भी पकड़ करके एक गुफा में बंद किया और ब्रह्मा जी अपने पास में अपने ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद में भगवान ने विचार किया कि हमारे बछड़े भी गए, हमारे बालक भी गए, और उस दिन संयोग से हमारे बलदेव जी साथ में नहीं थे, ये किसी को पता नहीं। ये जो घटना है केवल भगवान श्रीकृष्ण को पता है, और जो सायंकाल हुई तो हम लोगों को सबको वापस जाना है, अब बछड़े भी नहीं है, बालक भी नहीं है, तो क्या करें। तो भगवान ने बछड़ों का भी रूप धारण कर लिया, बालकों का भी रूप धारण कर लिया, और सायंकाल घूमते घूमते वो व्रज में आते हैं, और सबके सब उसमें भगवान कृष्ण ही कृष्ण है। जो छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे वहां पर बालक है, वो सबके सब भगवान कृष्ण है। और उनको रोज जो स्नेह मिलता था अपने माताओं से, बछड़ों के माताओं गायों से भी, और जो माताओं से भी जो स्नेह मिलता था उससे अधिक स्नेह मिलने लगा, बड़ी प्यार होने लगा उनसे। और वहां पर जाकर के ऐसा एक वर्ष लगभग लगभग हो गया, और उसके बाद में विचार किया कि अब एक वर्ष हुआ है, और एक वर्ष पहले बलदेव जी ने विचार किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब तक ब्रह्मा जी वापिस आते हैं, वो देखते हैं कि अभी क्या गति है। उस समय देखा कि जैसे मैंने उन बछड़ों को वहां पर छुपा के रखा था वैसे कि वैसे ही, जैसे जिसकी आयु थी, जैसा जिसका नाक था, जैसे जिसके कान थे, जैसे जिसके बाल थे, जितना बछड़ा जितने आयु का था उतने ही के उतने बछड़े और बालक वहां पर एक गुफा में भी हैं, और यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण भी उनका लालन पालन कर रहे हैं। ये देख करके जो ब्रह्मा जी थे उनका मोह भंग हो गया, और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर यहां पर स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि और भी लोग कथा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया, और अनेक राक्षसों का वध किया भगवान ने। और एक बार निकल गए थे बाहर, तो सभी जंगल में गए थे, वहां पर एक बार दामानल लग गया, सब वहां पर त्राही त्राही करने लगे, तो भगवान ने सबको वहां पर बचाया। और फिर उसके बाद में गोपिकाएं रोज देखती हैं, अब भगवान गौ चराना प्रारंभ करते हैं, और गौ चरा कर आते हैं तो भगवान का जो स्वरूप है विमल, भगवान जब आते हैं और गोपिकाएं विचार करती हैं, जो गोपिकाओं का जो मन है वहां पर भगवान के प्रति आकर्षित होता है, और भगवान का स्वरूप कैसा है, वरहा पीड़म नट भर वपो
करयो कर्णिकारम
विभ्रद्वास
कनक गर्जम वैजयं विंचमाना रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयं गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणो प्राविशत गीत कीर्ति।
मयूर पंख लगा करके, और जो जंगली फूल होते हैं वन के फूल अपने कानों में डाल करके, वैजयंती की माला पहन करके, जब सायंकाल गौ को चरा करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो गोपिकाओं के मन में बहुत आनंद होता है। और इस प्रकार वहां पर वेणु गीत होता है, गोपिकाओं का चित्त तो भगवान के प्रति आकर्षित हो ही गया था। उसी समय उन्होंने विचार किया कि हमको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान हमें प्राप्त हो, इस प्रकार का उन्होंने संकल्प किया। और संकल्प करने के बाद में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु जो कार्तिक मास, हेमंत लगभग कार्तिक मास में आता है, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, जो वहां की कुमारिकाएं थे उन्होंने ये निश्चय किया कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ उपासना करेंगे अपने यहां पर। आज भी हम लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं, और वहां पर जमुना तट पर जाकर के उन्होंने महामाया कात्यायनी का उपास प्रारंभ किया। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी धीश्वर नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। उन गोपिकाओं ने कात्यायनी मां से प्रार्थना की कि हे भगवती, हमें जो नंद सूत हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने एक मास तक वहां पर उपासना की, भगवती की पूजा करते। भगवती की पूजा करने के बाद में उनको पुष्प है, चंदन है, उनको भोग अर्पण करते और उसके बाद में वो वहां पर यमुना में स्नान करती और स्नान ऐसा करती कि वस्त्र न बदलना पड़े, इसलिए अपने वस्त्र वहां पर वृक्ष पर रख करके वो स्नान के लिए चली जाती। ऐसे एक मास उन्होंने ऐसा व्रत किया, परंतु भगवान ने विचार किया कि हमारे भक्त हैं, उनके द्वारा कर्म में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक दिन प्रातः काल भगवान पहुंच जाते हैं और प्रातः काल पहुंच करके भगवान ने विचार किया कि इनको कर्म को सुधारना चाहिए और जितने कपड़े रखे हुए थे भगवान ने सब के सब एक कदम के वृक्ष पर जाकर के लटका दिया और वहां जाकर के ऊपर बैठ गए और धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। और जैसी मुस्कुराहट आई, उन कन्याओं ने विचार किया कि हमारे पास में कोई ना कोई है, रोज तो ऐसी आवाज नहीं आती थी, आज ऐसा कौन सा स्वर आ रहा है। और उन्होंने वहां पर देखा तो हमारे कपड़े जो है वो सब के सब वृक्ष पर लटके हुए हैं और देखा वहां से मधुर मुस्कान के साथ में भगवान श्रीकृष्ण वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे श्रीकृष्ण, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। भगवान ने कहा कि बाहर आकर के ले जाओ। उन गोपिकाओं ने कहा कि भगवान हमें क्षमा करें, अगर आप वस्त्र नहीं लोगे तो यहां पर एक श्लोक लिखा है, श्याम सुंदरते दास्य करवाम तयोजितम देही वस्तां वासांसि धर्मज्ञ मोचद्राग्ये ब्रुहामहे। अगर तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम लोग जाकर के नंद बाबा को कह देंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले नंद बाबा से कह के आओ, फिर मैं वस्त्र दे दूंगा। शरणागति प्राप्त कर ली, अब हमारे वस्त्र दे दो। उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे से थोड़ी सी भूल हुई है, ये वरुण देव साक्षात जल में होते हैं, इसलिए वहां पर नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास यहां आया हूं, तुम्हारे वस्त्र का हरण किया हूं, इसमें और कोई भी नई बात नहीं है और इस प्रकार से तुम आगे ऐसा नहीं करना। और तुमने जिस ध्येय से, जिस संकल्प से एक मास तक मेरी पूजा की है, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान आशीर्वाद देके चले गए। और उसके बाद में भगवान ने, एक दिन की बात है, जो वन में घूम रहे थे और वन में जाते जाते उस दिन किसी को कुछ बोले नहीं थे, तो कोई उनका जो साथी थे, मित्र थे, किसी ने भी भोजन नहीं लाया, सब के सब खाली हाथ आए। चलो प्रेमपुरी में जाएंगे तो वहां पर अपने भोजन तो अपने मिलने वाला है। एक दिन सब के सब भूल गए। दोपहर हुई और एक दिन की बात है, वो सब के सब कहने लगे कि भगवान बैठे हुए थे और भगवान बैठ करके कुछ उपदेश दे रहे हैं। अथ गोपै परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनार्गतो दूरं चारयन्गा सहग्रजः। गौ चराने के लिए बहुत मन से दूर चले गए हैं और उनके कुछ साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत लोगों का नाम नहीं लिया है, परंतु यहां पर खास खास लोगों का नाम लिया है। और अपने मित्रों को कहते हैं कि हे स्तोक कृष्ण, एक उनका जो मित्र है उसका नाम कृष्ण है, स्तोक कृष्ण बोलते हैं। एक अंशो श्रीदामन, एक नाम उनका एक है सुबलार्जुन, विशालर्षभ, तेजस्विन, देवप्रस्थ, वरुथप, इतने वहां पर उनके साथियों का नाम यहां पर गिनाया और सबको बोला। भगवान श्री कृष्ण एक एक का नाम लेकर के बोल रहे हैं। पश्चेतान महाभागान, ये देखो ये जो वृक्ष हैं, जो वन में है वृक्ष ये क्या करते हैं, परार्थे कांत जीविताम, ये दूसरे के लिए जी रहे हैं। वृक्ष किसके जी रहे हैं? वृक्ष जीता किसके लिए? अपने लिए। नदी किसके लिए बहती है? अपने लिए, हमारे लिए बहती है। वृक्ष फल किसके लिए देते हैं? कभी देखा है कभी आपको आम में, आम जब लगता है आम खुद अपने आम खाता है? नहीं। तो यहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो वृक्ष है, वात वर्षात महीयन सहंतो वारयंती न, ये वायु है, ये वर्षा है, ये धूप है, उसमें खड़े रह करके ऐसे वो अपने वृक्ष जो है वो दूसरे के लिए, दूसरे के काम के लिए वो यहां पर रहते हैं, वो परोपकार करते हैं। आहो ये शाम वरह जन्म, इनका जन्म पुण्यमय है और इनके जो कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पत्र पुष्प फलच्छाया, उनका पत्र है, जो पत्ते हैं, पुष्प है, फल है, छाया है, उसकी छाल है, गंध है, उसका भस्म है, सबकी सब रक्षा आदि सबके सब उनका काम आता है। जो फल होता, वृक्ष होता है ना, उसका पत्ता भी, उसकी छाया भी, उसकी छाल भी, उसका गोंद भी, और अगर जलने के बाद में उसमें राख होती है, राख भी माताएं लोग क्या करती है, उसको बर्तन को घिसने के लिए, आजकल तो पाउडर आता है गांव में, आज भी उस राख का ही प्रयोग होता है। जो वृक्ष होता है उनके सब के सब, कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है जिसका उपयोग नहीं होता है। ऐसा जीवन होना चाहिए, और ऐसा जीवन होने के लिए, और तब तक दोपहर हो गई, उस दिन भगवान उपदेश देने में लगे हुए थे, और उस समय सभी बालकों ने कहा कि भगवान अब उपदेश तो बहुत हो गया, ये वृक्ष की हम लोगों ने जो उनकी विशेषता है वो तो जान ली, परंतु राम राम महावीर, हे राम हे कृष्ण, अभी एशाते बारिते क्षुद्ध तस्मा शांति गर्तुम हत, बोलते हैं कि अभी बड़ी भूख लगी है, अब इसका कुछ निवारण करो। अब कहां से लाए भोजन, अब घर तो दूर है, माताएं भी कहीं काम में गई होगी, अब आज भोजन कैसे मिले? भगवान ने कहा कि यहां से थोड़ी देर पर एक यज्ञ हो रहा है, और वहां पर जाकर के अपने लिए भोजन मांग के ले आओ। अब भूख लगी, कुछ वहां से बालक चले गए वहां पर यज्ञ जहां हो रहा था, और वहां यज्ञ मंडप में जाकर के ब्राह्मणों से कहा, भोजन हमें चाहिए, भगवान आए हुए हैं। जो केवल मंत्र बोलने वाले होते हैं उनको भगवान क्या होता है ज्यादा पता नहीं होता है, वो मंत्र में रमे रहते हैं। जो मंत्र की व्याख्या समझते हैं उनको पता होता है भगवान क्या है। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो भगवान को जानते हैं आप तो मंत्रज्ञ भी है, उसकी जानकार भी है, परंतु वहां पर जो कर्मकांड केवल करने वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भगवान बनकर के सब लोग ऐसे घूमते हैं, जाओ उनको झिटका के वहां से भेज दिया। और वो जो बालक थे वापस आकर के बोले कि हमारे तो हम वहां तो डांट दी हम लोगों को, हम लोग वापिस आ गए, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग गए कहां थे? उन्होंने कहा कि आपने जहां बोला था वहां चले गए थे। जो ब्राह्मण है तो किससे पूछा? तो बोले हमने ब्राह्मणों से पूछा कि हम लोगों को भोजन चाहिए, उनके पास कहां से भोजन होगा? अरे उनकी पत्नियों के पास जाते, वहां जाकर के भिक्षा मांगते, और उस समय पुनः बालकों को भेजा, और फिर वो पाकशाला में गए जहां पर ब्राह्मणियां वहां पर भोजन बना रही थी, और भोजन बनाते बनाते उन्होंने कहा कि हम भगवान आए हुए हैं और वो भोजन की याचना कर रहे हैं। उनको पता था, जो फल बेचने वाले थी उसने सबको बताया था कि हमने फल बेचते बेचते उस बालक ने मुझे मुट्ठी भर अनाज दिया था, और उस मुट्ठी भर अनाज में केवल हीरे जवाहरात और मोती थे और कुछ था नहीं। उनको पता था कि भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं, और उन्होंने विचार किया, और उसी समय उन्होंने भोजन की तैयारी शुरू कर दी और सुंदर सुंदर पकवान बनाए, और जब तक पकवान बनाए और पकवान बना करके जाने लगे, और तब तक एक वहां पर ब्राह्मण को थोड़ी सी प्यास लगी थी, वो जल पीने के लिए आ गया और उसने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उन्हें कहा कि भगवान आए हैं, उनको भोजन देना है। तो सब तो वहां पर भोजन लेकर के चलने लगी, परंतु एक जो उस ब्राह्मण की पत्नी थी, उस ब्राह्मण थोड़ा सा कट्टर रहा होगा और किसी को मानता नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कि तुम नहीं जा सकती, अगर जाने की कोशिश करोगे तुमको मैं बांध के रखूंगा। उसको वहां पर बंधन में डाल दिया और वो भगवान का चिंतन करते करते जब दूसरी ब्राह्मणिया वहां पर भगवान के लिए भोग ले जा रही थी, उससे पहले वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसने भगवान को पहले जाकर के वहां पर भोग लगाया, भगवान के वहां पर पहुंच गई। इस प्रकार का अनेक प्रकार से भगवान का वहां पर गुणगान हो रहा है, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। और अब एक दिन की बात है, ऐसे अनेक प्रसंग यहां पर भागवत में भगवान के विषय में बाल लीला के बारे में कहे हैं, इसलिए अब हम लोग गोवर्धन लीला की तरफ जाने वाले हैं। इसलिए उससे पहले थोड़ा सा भगवान का थोड़ा सा भजन संगीत
गोपाल गिरधारी मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी रंगीला है रसीला है रंगीला है रसीला है ना गोरा है ना काला है रंगीला है रसीला है रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है कभी वो मुस्कुराता है। ये तड़पाने का मोहन ने ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। खोश हो जाना कभी सपनों में आ जाना
कबीर होश हो जाना,
कबीर होश हो जाना। ये तड़पाने का मोहन ने, ये तड़पाने का मोहन ने निराला जग निकाला है। ये तड़पाने का मोहन ने निराला जग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
तत्रैव बलदेवेन संयुतः, भगवान श्री कृष्ण और बलदेव अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि हमारे सभी वृंदावनवासी कुछ उद्यम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। वो था इंद्र याग की तैयारी कर रहे थे। यद्यपि भगवान सर्व सबको जानने वाले हैं, यदि विगो भी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन, वो सर्वात्मा परमात्मा सब जानते हैं, फिर भी नंद बाबा के पास में जाके कहा कि बाबा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे पिता हैं, आपका मैं पुत्र हूं, और पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं रहता है, इसलिए मैं अगर आपको पूछता हूं, अगर कोई गुप्त बात न हो तो मुझे आप बतला देना। और जो पुत्र होता है वो पिता की ही आत्मा होती है, इसलिए वो दोनों में भेद नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि हम लोग पहले से ही इंद्र का यज्ञ करते हैं, वर्ष में एक बार हम लोग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, और स्वादिष्ट भोजन बना करके हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग इंद्र यज्ञ कहते हैं। और ये प्रतिवर्ष का हमारा कार्य है, क्योंकि इंद्र वृष्टि करता है, उससे हमारा अन्न उत्पन्न होता है, हमारे गौ के लिए चारा उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात करता हूं। भगवान यहां पर कुछ कर्म की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को, अपने नंद बाबा को कर्म का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि कर्मणां जायते जंतु, एक कर्म से ही ये जो जंतु है, मनुष्य है, कोई जीव है, वो कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मणां जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और उसका कर्म में ही विलय हो जाता है। ये भगवान का उपदेश है। हम कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे तीन कर्म होते हैं, आप लोगों को पता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जो वेदांत पढ़ते हैं ना, उनको सब पता है। वेदांत के श्रवण करने वाले को कर्म की तो व्याख्या होती रहती है। तो कहते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। ये प्रारब्ध कर्म से हमें शरीर प्राप्त हुआ, संचित कर्म अनेक पड़े हुए हैं, और जो हम कर्म करेंगे उसके कुछ फल हमें प्राप्त होंगे और कुछ फल हमारे भी संचित कार्य में चले जाएंगे। और जो कुछ प्राप्त होता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख है, दुख है, भय है, कल्याण है, ये किससे प्राप्त होता है? ये कर्म से ही प्राप्त होता है। और आप यज्ञ करने जा रहे हैं इंद्र का, अस्ति चेश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर अगर फल देने वाला है तो किसी को ऐसा देखने में आता है कि किसी ने कर्म न किया हो और उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। हमने कोई कर्म नहीं किया है परंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। अगर ईश्वर है तो उसको सबको देना चाहिए। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि आप जो आपने ईश्वर है उसकी प्रार्थना करो, उसके लिए आप तब तक बहुत से अनुभव हो चुके थे, बहुत से चमत्कार देख चुके थे नंद बाबा। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे पास में हमें जो जीवन दान देने वाला है वो तो है गोवर्धन। आज ऐसा करो कि हम लोग चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं, और पहले जैसे बनाते थे उससे सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। अब सब लोगों ने, भगवान कृष्ण ने बोला कि भगवान कृष्ण की सब बात मानते थे, उन्होंने जब कह दिया तो सब लोगों ने सुंदर सुंदर भोजन बनाना शुरू कर दिया। किसी ने खीर बनाई, किसी ने मालपुआ बनाया, लड्डू बनाया, पुआ बनाया, यहां से आवाज आई पुआ बना होगा, पूरनपोली बने। नहीं, इधर सुबह सुबह होता है यहाँ पर तो नहीं, तो अच्छा है ना, वो तो कोई बात नहीं। पोहा अगर पोहा भी होगा तो भगवान के है ना, वो आगे भी खाने वाले हैं ना, उनको पता है आगे जो तंदूर है वो सुदामा जी से लेने वाले हैं, उनको पता है। सुंदर सुंदर पंच पकवान, पंच पकवान क्या, वो 56 भोग बना। अब आज तक वो परंपरा चल रही है, आज भी यहां पर होने वाला है, देखना। सुंदर सुंदर पकवान बने, एक घर से नहीं बने, सभी लोगों को आदेश दिया गया कि जो तुम सुंदर से सुंदर बना सकते हो, कड़ी है, पकौड़ी है, मालपुड़ी है, सब कुछ बनाए। और सब लोगों ने वो सुंदर सुंदर वो स्वादिष्ट भोजन को बनाया और अपने अपने छकड़ों में उसको रख दिया। और सबके सब छकड़े आज चल रहे कहां पर, आज गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वात्मा है, सबके स्वामी है, फिर भी आज बालवत उस समय अपने बाबा को उस परमात्मा का दर्शन कराने के लिए आज गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। और धीरे धीरे गोवर्धन की तरफ गए और सब लोगों ने वहां पर बैठ करके सब आप चीजें रखो, और भगवान के सामने वहां पर तलहटी में, गोवर्धन की तलहटी में सब के सब, अब यहां से भी उठाओ ऐसा, जब यहां तो थोड़ा है, वहां तो सब पूरे गांव का था ना, अब बैठे रहो, हाँ आप जो यजमान है उनको बुला लो। बैठ जाओ नीचे, नीचे थोड़ा पीछे नीचे बिठा लो, नीचे बिठा लो। हाँ हाँ बैठो बैठो नीचे, थोड़ा बैठो, फिर अभी कथा थोड़ी होगी फिर बाद में। और सबके सब वहां से गोवर्धन की तलट में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये यजमान लोग बैठे हैं। कोई नंद बाबा, माँ यशोदा, नंद, उपनंद, सब बड़े बड़े वहां पर सब नंद बरबरा बैठे हुए हैं। और भगवान ने विचार किया कि आज जो भगवान क्या है वो बताना चाहिए। पहले भगवान का पूजन किया, भगवान का पूजन किया, देखना
नरजसावरदमानो निवेदयन् नामृतम् अर्जञ्च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् विष्णोरराजमसि विष्णोः सत्रे स्व विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोति वैष्णवामासि भीषणावे त्वा कदभीषणोः परमं पादपूजयन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरातदं मा सेवन्ति कामकुलचम्बकपाणिभाव्यै पुन्नागजाचिकरवीररतालपुष्पैः बिल्व प्रवाद तुलसी गलमालती स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मस्तूरी तिलकम् ललाट पटले कौसुमम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणोकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगला कल्पप्रचूडाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादहरे निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्तस्त्रस्त निबद्धनीमि विलसत् गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृते हरिः ओम् मा अन्धस्थान्धो वो भक्षीयो हरिदत्तो हरिधम्भो भक्षीयो
बैठो नीचे, बैठे रहो, बैठे रहो थोड़ा नीचे। ये पूजन हुआ, पहले पूजन हुआ भगवान ने सबका। भगवान ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर गोवर्धन नाथ विराजमान है। भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, हे बाबा, आज हम आपको गोवर्धन धारी का भगवान गोवर्धन की पूजा करवाते हैं और स्वयं वो पूजक बने हुए हैं। आज ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहे हैं भगवान। जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भगवान ने पहले कहा कि देखो ये बाबा, ये हमारे भगवान हैं। पाद्यम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, सब वहां पर उन लोगों को चलाना था, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और उसके बाद में नंद बाबा से कहा कि बाबा, आपको कुछ दिख रहा है? नंद बाबा ने कहा, कुछ कुछ तो दिख रहा है, बोले थोड़ा सा गौर से देखो। बोले ऊपर के जो शिखर है वहां पर कुछ मुकुट जैसा दिख रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि और बाबा देखिए, देखिए मुखाकृति की कुछ दिख रही है। भगवान ने कहा कि और देखिए, तो धीरे धीरे स्वयं जहां पर जो बैठे हुए थे भगवान कृष्ण, जो पूजा करवा रहे थे, जो पूजक थे, वहां पर जाकर के पूज्य होकर के बैठ गए। दो स्वरूप धारण कर लिया, एक पूजक बने हुए हैं और एक पूज्य बने हुए हैं दोनों जगह। और भगवान अपने पिताजी को कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है हमारे, गोवर्धन नाथ यहाँ पर विराजमान है, और फिर अब इनको भोग लगाओ। अब वहां पर भोग लगाना शुरू कर दिया, और भोग लगाते लगाते जो भी अर्पण करते वहां पर जाकर के भगवान वहां पर उसको ग्रहण करते।
भगवते श्री कृष्णाय नमः। गोवर्धन धारिणे श्री कृष्णाय नमः। दीपं जा विदर्शयामि आसादित नैवेद्यम्।
अब आप लोग चाहे तो बैठ सकते हैं वहां पर। भोग लग गया, नहीं भोग लगा दिया, भोग लगा दिया।
भगवता
स्वाहाय
स्वाहाय स्वाहाय
स्वाहाय
स्वाहाय
स्वाहाय
स्वाहाय स्वाहाय
ब्रह्मणे नमः।
ओम अंधसांधो भक्षीयमः तमहो भक्षीयोर्यतोर्जम्बो भक्षीयराय सपोहस्तराय सपोकम्बो भक्षीयः। मदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।
गृहाणमुखो भूत्वा भक्षीर परमेश्वर।
भूत्वा स्वाहा गोवर्धन धारिणे श्रीकृष्णाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याचनीयं समर्पयामि हंस प्रक्षालनम्। उत्तरापोलिं समर्पयामि गुरोदर्पणार्थे। चन्दनं समर्पयामि मुकुटोत्तरार्थे। मूलकफलतामूलं हिरण्यगर्भदर्शनाय समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमामि। तत्तत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सद्गुणात् महाराज की जय।
भगवान ने दो स्वरूप धारण कर लिए हैं, भगवान ने दो स्वरूप धारण कर लिए हैं, एक पूज्य है और दूसरा पूजक है। स्वयं दो स्वरूप धारण कर लिए तस्मै नमो ब्रजजनै। इसीलिए सब ब्रजवासियों को विश्वास हो जाए कि आज जो भगवान कृष्ण ने जो कर्म किया है और ऊपर बैठे हुए उनको उन्होंने नमस्कार किया। पहले अपने आप को ही पहले नमस्कार किया, जो बैठे हुए वो भी कृष्ण है, जो नीचे पूजा करवा रहे हैं वो भी कृष्ण है, और फिर उनको भोग लगाना शुरू कर दिया। आजकल के भगवान में हम शायद उतने नहीं होते हैं कि उनके हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को खिलावे, परंतु साक्षात भगवान भगवान को खिला रहे हैं। जो पूरण पूरी बनी थी, जो खीर बनी थी, मालपुए बने थे, और धीरे धीरे सबको प्रसाद वहां पर देने लगे, और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ उनको खिला देने के लिए और फिर शेष कुछ बचा लिया। और भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा कि भगवान इंद्र ने आज तक ऐसा आपसे आपके हाथों से कोई भोजन ग्रहण किया क्या? बाबा बोलते हैं कि आज तक ऐसा कभी हमने दृश्य देखा ही नहीं। जिसको जिसको भोग लगाया केवल भोग लगा के हम वापिस लाते रहे, केवल उनको हम अर्पण करते रहे। और भगवान का ये जो कार्य है बड़ा सुंदर कार्य वहां पर हुआ, और भगवान का भोजन भोग लगा करके और फिर वापस सब आने लगे। और तो वापस आकर के आप लोग आप बैठ जाओ, आप बैठ सकते हैं, यहाँ बैठा थे आप बैठ सकते हैं। सारू से बेसमान आंदोलन हो तो यहाँ बेसी जाओ आराम से। और भगवान का भोग लगा करके वापिस जब आने लगे तो इंद्र को पता लगा कि हमारे इंद्र का जो यज्ञ था उसको आज भंग किया है। और छोटा सा कन्हैया बालक उसने आज अपने पिताजी को बहिगा करके हमारा जो परंपरा से यज्ञ था उसको उन्होंने होने नहीं दिया है, इसलिए उसको थोड़ा सा क्रोध आया। और क्रोध आने के बाद में उसने अपने जो सबसे बड़ा जो गण है, जो संवर्तक जो उसके मेघ है, उनको बोला और उनको आदेश दिया, जाओ वहां पर वृद्ध पर खूब वर्षा करो। और घनघोर वर्षा होने लगी, आज ही हो रही है। इसलिए नहीं हो रही कि यहां पर गोवर्धन पूजा हो रही है, वो कल से हो रही है जब से जन्म हुआ है। ये नहीं समझना कि हम लोग करा रहे हैं, होता है जो भगवत कार्य है उसमें कोई नहीं रोक सकता, ये भगवान का कार्य है। और घनघोर वर्षा होने लगी, सब त्राही त्राही करने लगे कि कृष्ण अब हमें बचाओ, हमें त्राही माम त्राही माम त्राही माम। सब भगवान कृष्ण के चरण गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो। धीरे से उसी गोवर्धन को अपने हाथों से ऊंचा किया और उसको धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन
नाथ की जय।
और सबको कहा कि भीतर आ जाओ, वहां पर नंद बाबा यशोदा सभी गोप सभी गोप बालक और यहां तक कि उनके छकड़े उनके गाय उनके सब के सब बोलो कि अंदर आ जाओ। और घनघोर वर्षा होती रही, घनघोर वर्षा होती रही और 7 दिन तक वर्षा चली। इंद्र को लगा कि अब तो वो ब्रज क्या वहां पर संपूर्ण वहां पर जितना है वो सब कुछ चला गया होगा, सब डूब गया होगा। आके देखा तो वहां पर सब के सब वहां पर और गोवर्धन नाथ अपने एक अंगुली पर उस गोवर्धन धारण करके लगे हुए हैं और कुछ गोप पालक भी थे उनके साथ में। उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अकेला ये कन्हैया थक जाए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी कुछ सहायता करें। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम्हारी अपनी सहायता करो। उन्होंने अपने आप ही लाठियां लगानी शुरू कर दिया और कहने लगा कि देखो कुछ थक जाओ तो हमें बोलना कि तुम सो जाना, हम लोग धारण कर लेंगे। भगवान ने विचार किया कि थोड़ा उनको भी थोड़ा सा समझाना चाहिए। उन्होंने अपने अंगुली को धीरे से नीचे क्या दी थी, जब गोवर्धन नीचे आने लगा रहे बाबा बचाओ बचाओ बचाओ, इस प्रकार का जो वहां पर वातावरण बना। और इंद्र को लगा कि क्या हुआ, इंद्र ने देखा तो वहां साक्षात वो परब्रह्म है। और इंद्र आता है और भगवान का फिर अभिषेक करता है, सुरभि गौ को लाते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद में उनकी स्तुति करते हैं इंद्र।
भगवान गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्रीजी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। शरण प्रभु तुम्हारी शरण,
तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण,
तुम्हारी शरण विधु तुम्हारी शरण,
तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण,
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण,
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
तुम बिन मेरी
कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। हमारे गोवर्धन गिरधारी, हमारे गोवर्धन गिरधारी। कुंडल की छवि न्यारी हमारे गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। हमारे गोवर्धन
भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन जी को अपने एक अंगुली पर जब एक छत्ते के तरह उन्होंने धारण किया तो जो भी ब्रजवासी आए थे उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया नंद बाबा से, हे नंद बाबा हम लोगों को शंका हो रही है, तुम्हारे ये छोटे से बालक ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, बड़ा भयंकर जो नाग था, जो कालिया नाग था उसका मर्दन किया, वन में अग्नि लगी थी उसको स्वयं अपने में उसको प्राशन किया था, अनेक अनेक ऐसे बड़ा भारी अघासुर नाग था उसका उन्होंने वध किया, है क्या थोड़ी शंका होने लगी। अब नंद बाबा कहते हैं कि ये जो चर्चा है यही गर्गजी ने मुझे कहा था, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, बहोनी संति यहां पर जितना कहा गर्गजी ने कहा था ये सबके सब यहां पर दोहरा रहे नंद बाबा, बहोनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते, आपका जो ये पुत्र है इसके बहुत नाम है, बहुत से गुण है और अनेक अनेक युग में अनेक अनेक अवतार लेता है, इस प्रकार का उनका सब उनकी शंका को निवारण किया और उसके पश्चात सब लोग अपने उनका कीर्तन करते हुए अपने यहां चले गए। और उसके बाद में इंद्र आते हैं, इंद्र ने भी भगवान का अभिषेक किया है और भगवान का अभिषेक करने के बाद में अब दूसरे दिन एक दिन की बात है, एकादशी थी और इस एकादशी को निराहार रहे नंद बाबा और उनको लगा कि रात्रि को एक होता है ना मुर्गा बांध दिया होगा, उस समय उन्होंने कहा कि चार बज गए होंगे और रात्रि को ही वो स्नान करने के लिए चले गए और वहां पर वरुण लोगों के वरुण के दूतों ने उनको बंदी बना लिया। और भगवान सब जगह जाते हैं, पहला आज वरुण लोक में क्योंकि जल में प्रवेश कर रहे हैं, वरुण का जो स्थान है वो जल है, जल में नंद बाबा जाते हैं और नंद बाबा को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जल में प्रवेश करते हैं, वरुण लोक में जाते हैं और वहां से जाकर के अपने बाबा को छुड़ा के लाते हैं। और अब भगवान कृष्ण को ये लगा कि मैंने गोपिकाओं को मैं वचन दिया था कि उनकी जो कामना है उसकी मैं पूर्ण करूंगा उसको, और उसी का संकल्प करते हुए
भगवान पिता रात्रि शरदोत्तुल्य मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समाप्रस्थः।
भगवान ने एक ऐसी रात्रि का निर्माण किया जो महारात्रि है और रात्रि का निर्माण करके संकल्प किया, वो शरद की रात्रि थी और शरद की रात्रि में उन्होंने एक सुंदर मधुर बांसुरी की धुन बजाई जो ओंकार स्वरूप थी। भगवान ने बांसुरी की ध्वनि की और जैसी बांसुरी की ध्वनि हुई उसी समय सबके सब गोपिकाओं का मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ और आकर्षित होने के बाद में सब गोपिकाएं वहां पर पहुंच जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जहां पर बैठे हुए जहां पर बांसुरी बजा रहे हैं जहां पर ओंकार की ध्वनि हो रही है और सब गोपिकाएं उनके आसपास आती हैं और जैसे ही भगवान ने उनको देखा उन्होंने उनको कहा कि स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है, स्वागत किया गोपिकाओं का और कहा कि किस लिए आए हो यहां पर, अपने माता पिता अपने पुत्र अपने पति सबको छोड़ के आए हो और आप लोग यहां पर आए हो, मेरा दर्शन हो गया है अब आप लौट जाओ। कहा कि भगवान आपने जो स्वर आपने जो बांसुरी का स्वर आपने वहां पर से किया उससे हम आए हैं और हम अपना मन अभी आपके अंदर प्रवेश हमारा हो गया है, अब हम वापस जा नहीं सकते हैं। बोले हम आपको भेज देते हैं वापस यहां से जाओ, अब इस वन में क्या करोगे। गोपिकाओं ने कहा कि भगवान अगर हमने आपको मन समर्पित किया है अगर आप मन वापस करेंगे तो हम से चले जाएंगे, बिना मन का वहां पर जाके करेंगे क्या। भगवान ने कहा कि एक बार मुझे मुझे मन अर्पित करता है उसको मैं वापस नहीं करता हूं, तो वहां जाके बिना मन के जाके करेंगे क्या, इसलिए अब आपके साथ में यहां पर। तो भगवान ने विचार किया कि इनको मैंने वचन दिया था और उसी प्रकार भगवान ने छोटे से रास का वहां पर आयोजन किया और भगवान ने सबको लेकर के अभी नहीं भगवान सबको लेकर के जमुना तट पर गए हैं और वहां पर उन्होंने स्नान किया है और सब गोपिकाएं मिलकर के भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं। और गोपिकाओं को लगा कि हमारे से श्रेष्ठ दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। उनको थोड़ा संबंध में अहंकार हुआ और भगवान को अहंकार कदापि पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। और जिनको अहंकार होता है उनका वो त्याग नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वहां से अदृश्य होते हैं। और भगवान वहां से अदृश्य हुए और अदृश्य होने के बाद में गोपिकाओं की बड़ी दशा हो गई कि कहां गए, अभी तो हमारे पास में थे। और गोपिकाओं ने ये विचार किया कि उस वन में भगवान कहां छुप गए हैं, और उन भगवान को खोजते खोजते वो गोपिकाएं उस वन में जा रही है, विचरण कर रही है। उनको एक पीपल का वृक्ष दिखा, अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, बोलते हैं भगवान का स्वरूप है। और अश्वत्थ को पूछा, हे पीपल, हमारे सखा भगवान कृष्ण इधर गए हैं, तुमने देखा है? आप तो पीपल क्या बोलने वाले हैं। उसके बाद में उनको तुलसी दृष्टिगत हो गई, तुलसी से पूछा, तुम तो कच्चित तुलसी कल्याणी, अरे तुम तो गोविंद के प्रिय हो, हमें बताओ हमारे सखा इधर गए हैं। तो उसने भी कुछ नहीं बताया। वहां पर मालती मिलती है, वहां पर आम मिलता है, पृथ्वी से पूछती है, हरणी से पूछती है, अनेक वहां पर लताओं से पूछती है। और उसके बाद में एक जगह बैठ करके भगवान का वहां पर लीला करती है। कोई कृष्ण बनती है, कोई पुतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, कोई कालिया बनता है, कोई कृष्ण बनती है, कोई अघासुर बनता है, ऐसी अनेक अनेक लीलाएं वहां पर करने लगी। और उसके बाद में और खोजने लगी तो देखा जाते जाते कि एक चिन्ह चरण चिन्ह दिखा। उनको लगा कि ये चरण चिन्ह भगवान का ही है, परंतु उसके साथ में एक और चिन्ह दिखा। उनको लगा कि ये दूसरा चिन्ह किसका है। उन्होंने पता लगाया कि जो हमारे श्रेष्ठतम गोपी है उसका हो सकता है, जिसका नाम राधिका है। और परंतु राधिका को भी लगा कि केवल मैं ही भगवान के साथ में हूं, उनको थोड़ा सा उनके सबसे मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा थोड़ा सा, वो तो महामाया है। फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं। और वहां पर भगवान को ऐसा लगा कि इनको भी थोड़ा सा, इनसे भी थोड़ा अदृश्य होना चाहिए। वहां से भगवान ने उनको भी वहां पर, वहां से भी अदृश्य हो गए। और वो भी गोपी रास्ते में मिली, उनसे पूछा, आप यहां पर कैसे हैं? और सब मिल करके उन्होंने विचार किया कि भगवान की जब तक हम शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान हमको दिखेंगे नहीं, उनका हमको अनुभव होगा नहीं। और इस प्रकार गोपिकाएं सब की सब आती है जमुना जी के पुलिन पर, और वहां पर आकर के भगवान के गीत गाती है, जिसको हम लोग गोपी गीत बोलते हैं। बड़ी व्याख्या लंबी है, परंतु मैंने जैसे आपको कहा था कि गोपिकाओं के साथ में भगवान रमन करने वाले हैं, और हम अब पांच उस मंत्र को हम लोग श्रवण करेंगे हमारे ब्राह्मणों के द्वारा। बोल सकते हैं, हाँ बोलो।
जयति ते दिगं सुरसना सते
यमुना जी के पुलिन पर एकत्रित हुई है और एक स्वर में भगवान की स्तुति गाने लगी है। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, जब से आपका यहां पर प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, वैकुंठ सा यहां पर वातावरण बना हुआ है, साक्षात लक्ष्मी यहां पर वो रमन कर रही है, ऐसा आपका यहां पर हम लोग यहां पर और हम लोग यहां पर मन मन में भटक रही है। अब कहते हैं कि केवल आप नखल गोपिका, आप केवल यशोदानंदन नहीं है, नंदनंदन नहीं है, आप तो अखिल देह अखिल जगत की आप कारण हैं। ऐसे अनेक प्रकार से स्तुति किए हैं और स्तुति करने के बाद में भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद में भगवान ने कहा कि अब तुम्हारी जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने तो पहले ही जो रात्रि का निर्माण किया था, उस समय वो शरद की रात्रि थी, चंद्रमा का उदय हो चुका था और भगवान ने विचार करते करते वहां पर सबको पुलिन पर ले गए, वहां पर स्नान हुआ और वहां पर एक रास का उत्सव प्रारंभ हो जाता है और वहां पर रासोत्सव प्रारंभ होता है और रासोत्सव में सब गोपियां वहां पर एकत्रित होती है और भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया है, गोपियों ने सब सुंदर स्वरूप धारण कर लिया है और रसोत्सव संप्रप्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन मध्य द्वयो द्वयो। एक भगवान और एक गोपी। दिलुर मंगलाचार्य ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है, अनेक श्लोक लिखे हैं, उन्होंने लिखा है
अंगना अंगना अंतरे माधव माधवम माधवम अंतरे अंगना 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 अंतरे माधव माधवम माधवम अंतरे अंगना ओ मे मयारा रे मारे वही वेदवान जावा मैया राय को पूर्ण गावना
मारे वही वेदवान जावा मैया राय
को पूर्ण गावना अमर मैया राय
किशोर मांगे थे दान दी आनंद किशोर मांगे थे दान दी हे मारे दान देवान ले राम यारा ने को गोण राम नाय मान दान ले
रमवाने तो आवजे
रविन श्यामने विकलण रागे दास रम वाले रो आवजे दास रम वाले रो आवजे घर में घूमती गोपियों को पूरी मिशेरियों घर में घूमती गोपियों को पूरी मिशेरियों सुनी सुनी शेरियों माँ गोपुर निकलियों माँ सुनी सुनी शेरियों माँ गोपुर निकलियो माँ राते रमवाने वेलो आव 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 कान तारा विना श्याम एक लड़ू लागे तारा विना श्याम एक लड़ू लागे राते रमवाने वेलो आव जे ओ राते रमवाने वेलो आव जे
गाइए
वाला
पर बोलिए हमे माँ चालो धीरे धीरे माँ लगन बोलिए हमे माँ चालो धीरे धीरे 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 माँ
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए चामुंडा माता की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर
ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम भेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला
हरि नाम यही हर ध्यान
आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति दीप पावन पुनीत
पापों को मिटाने वाला, हर दर्श जगाने वाला, हर दर्श कराने वाला।
सुख करनी
दुख करनी सुख करनी है दुख हरनी,
मधु को रंगे
आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल सब पंच कोण सब मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम है,
श्री राम यही घनश्याम है,
प्रभु की महिमा
भारती साधियों को पाप से तारती भागवत भगवान की भारती साधियों को पाप से तारती
पूर्ण गौरम करुणावतारम संतार तारम
सर्वेन्द्रनारम भवानीम नम
कर्पूर गौरेण मनोहर
सुवर्ण पात्र श्रीराजनम से जगदीश श्रीराजनम से जगदीश श्रीराजनम से
भगवते श्रीकृष्णाय नमः भागवताय नमः कर्पूर नीराजनम मंगल नीराजन दीपम च समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पेन देवतानां वंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदयेत् करो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिना देवं ध्यायेत् हरिः ॐ माजज्ञेन जज्ञामाय जन्ता देवा तानि धर्मानि परतमान्या तन्नातेहनाकं महिमानः सजन्ताजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो धातु कुबेराजवैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठ्यम् राज्यम् महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायी चात्सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्दातापृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणिशीतरप्येश श्लोको विगीतो मरुतः सर्वेक्षितारो मनसस्यानुगिरे आवेक्षितस्य कामप्रियेर्विषवे देवा सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिम् प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानास्कन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलर्मया दत्तां
परमेश्वर पूर्ध्वा स्वाहा भगवते श्रीकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकम् नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम
रक्षस्व परमेश्वर
मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर
पूजितम् मया देव परिपूर्णम् ददस्तु मे
आवाहनम् न जानामि न जानामि तवार्चनम्
न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर
गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च
गतः सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहम् तवदर्शनम्
एतानेतेषु अत्र धूपदीपनैवेद्य दक्षिणापदक्षिणा समन्विता कृतपूजनार्चनेन श्रीकृष्णः प्रियतान् नमः सत्सद्देवतार्पणमस्तु ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
नमः पार्वतीपते
हर 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 महादेव
सद्गुरुनाथ महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
श्याम तेथों दूर नहीं तेरा भी कसूर नहीं वेखण वाणी अख जहदी ओहदे बीच नूर नहीं श्याम तेथों दूर नहीं तेरा भी कसूर नहीं वेखण वाणी अख जहदी ओहदे बीच नूर नहीं का ढंग निराला सुनो जरा कितना के होए सुनो जरा कितना के श्याम मिलन का ढंग निराला सुनो जरा कितना के होए सुनो जरा कितना के मुस्काए तू बतावा कानू हर को उसनो जाके होए हर को उसनो जाके शाम तक दूर नहीं तेरा भी कसूर नहीं देखन वाली ऐसे मेरी और मेरी जरूर नहीं शाम तक दूर नहीं तेरा भी कसूर नहीं देखन वाली ऐसे मेरी और मेरी जरूर नहीं भक्ति रूपी सुरमाले के नान खड़ग विच पाले होए नान खड़ग विच पाले
सबु यजमान गोवर्धन पूजा का प्रसाद लेके जाए सबसे निवेदन है कि हर फैमिली एक ही लेके जाए हर पोथी पर एक ही बॉक्स लेके जाए ताकि सबको प्रसाद का लाभ मिल सके
मावा तारी मूर्ति माँ मोही मोही ने मावा तारी मूर्ति माँ मोही मोही ने प्यारा तारी मूर्ति माँ मोही मोही ने आना तारी मूर्ति माँ मोही मोही ने जीवो छोर दिला तारा सुखड़ा ने जोती भैया ना हार प्यारा नथड़ी ना मोती भैया ना हार प्यारा नथड़ी ना मोती जीव छू रसीला तारा उखड़ान ज्योति जीव छू रसीला तारा उखड़ान ज्योति नटवर मिर्गी तूने अंतर करे थे नटवर दुर्जन लोक भोला साजने मरे थे दुर्जन लोक भोला साजने मरे थे जीव छूर सीला तारा उखड़ान ज्योति जीव छूर सीला तारा उखड़ान ज्योति मन कर्म वजने हो सही रही तारी मन कर्म वजने हो सही रही तारी मुखड़ाऊ पर जाए ब्रह्मानंद वारी मुखड़ाऊ पर जाए ब्रह्मानंद वारी जीव छू रसीला तारा मुखड़ान जो